روشن۔ اصغری خانم دو باتوں میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھیں، ایک تو دین دھرم کے معاملے میں اور دوسرے شادیاں کروانے میں۔ ان کی بزرگی اور پارسائی میں تو کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں تھی، سب کو یقین تھا کہ انہوں نے اتنی عبادت کی ہے کہ جنت میں ان کے لیے ایک شاندار اور زمرد کا محل ریزرو ہو چکا ہے۔ حوریں اور فرشتے وہاں ان کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ کب خدا کا حکم ہو اور وہ وضو کا بدنہ، جائے نماز اور تسبیح سنبھالے، برقع پھڑکائے، جنت کی دہلیز پر ڈولی سے اتریں اور وہ انہیں دودھ اور شہد کی نہروں میں تیرا کر، پستے اور بادام کے گھنے درختوں کی چھاؤں میں ٹہلاتے ہوئے زمرد کے محل میں بٹھا دیں اور ان کی سیوا پر جٹ جائیں۔ اصغری خانم کا غصہ ہمیشہ ناک پر دھرا رہتا تھا۔ اگر ذرا بھی کسی جنتی بیوی نے چیخ چیڑ کی تو وہ اس کی سات پشت کے مردے اکھاڑنے لگیں گی اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے گی اور دوزخ کی آگ کی پناہ لے گی۔ دور دور خانم کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، انہیں ساری دنیا کا کچا چٹھا معلوم تھا، مجال تھی جو کوئی ان کے سامنے بڑھ چڑھ کر بولے۔ غازی پور سے لے کر لندن تک کی ہر بدکار عورت کا بھید جانتی تھی۔
اے کوئی بیاہی تیاہی ڈڈو نے لگوڑے بادشاہ کو پھانچ لیا،
وہ مسز سمسن اور ایڈورڈ ہشتم کے عشق پر تبصرہ کرتی۔
مجلی کو لاج بھی تو نہ آئی، میرا بس چلتا تو نخسمی کا چونڈا جھلس دیتی۔
مگر مصیبت یہ تھی کہ ان کا بس چل نہیں سکتا تھا، لندن سات سمندر پار تھا اور ان کے گھٹنوں میں آئے دن ٹیسیں اٹھتی رہتی تھیں۔ چونڈا جھلسنے کیسے جاتی، اتنا دم ہوتا تو حج نہ کراتی۔ مگر شادیاں کرانے میں تو وہ ایسے ایسے مارکے مار چکی تھیں کہ دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ قریب قریب ناممکن قسم کی شادیاں کرانے کا انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا، جسے وہ خود ہی آئے دن توڑا کرتی تھیں۔ بس اسی وجہ سے لوگ ان کی بڑی آؤ بھگت کیا کرتے۔ کماریاں کس گھر کا بوجھ نہیں ہوتی، جس گھر میں چلی جاتی لوگ سر آنکھوں پر بٹھاتے، سر جھکا کر ان کی گالیاں کوسنے، تانے مانے سنتے۔ انہوں نے ایسی ایسی ڈراؤنی شکل کی لڑکیوں کے نصیب کھولے تھے کہ لوگوں پر ان کی ہیبت بیٹھ گئی تھی۔ خاص طور پر یہ کنوارے لڑکے تو ان سے کانپتے تھے جیسے وہ موت کا فرشتہ ہوں، نہ جانے کس پر مہربان ہو جائیں اور اپنے بٹوے میں سے کوئی پچھل پائی نکال کر سر پر منڈ دیں۔ جہاں کوئی شادی کے لائق نظر پڑ جاتی وہ پنجے جھاڑ کر اس کے ماں باپ اور سارے محلے ٹبے والوں کے پیچھے لگ جاتی اور شادی کے قبل لڑکے تھرا اٹھتے، مگر وہ شادی کرا کے ہی دم لیتی۔ کچھ ایسا پینترا چلتی کہ الٹا لڑکا دہلیز پر ناک رگڑنے لگتا۔ لوگوں کا کہنا تھا ان کے قبضے میں جنات ہیں جو ان کا ہر حکم بجا لاتے ہیں، مگر ایک جگہ ان کے سارے ہتھیار کن ثابت ہوئے، تمام تاویز گنڈے چوپٹ ہو گئے۔ ان کی اپنی ممیری بہن توفیق جہاں کی بیٹی سبیحہ کو 24 سال لگ چکا تھا اور ابھی تک کوار کوٹلہ چنا ہوا تھا۔ اس سے چھوٹی عقیلہ منگی ہوئی تھی، عقیلہ کی پیٹ کی میمونہ کالج میں پڑھتی تھی، سب سے چھوٹی منو تھی۔ قبر کے بھی چار کونے ہوتے ہیں، توفیق جہاں کی قبر چنی کھڑی تھی۔ کھرے سیدوں کے خاندان کو داغ لگانے کی کسے ہمت تھی؟ لڑکوں کا تو دن بدن کال پڑتا جا رہا تھا، کسی کی تنخواہ ٹھیک ہے تو ہڈی میں کھوٹ، کوئی کمبو ہے تو کوئی پٹھان۔ ایک بیچاری انجینئر کی شامت آئی، پیغام بھجوا دیا، بعد میں پتا چلا کہ ہے مو انصاری ہے۔ اصغری خانم نے سیتا گرا شروع کر دی، طوفان کھڑا کر دیا۔ ان کے جیتے جی بیٹی انصاریوں میں جائے، ایسی بھاری شادی کا بوجھ ہے تو کوٹیاں میں ڈال دو۔ یہ جب کی بات ہے جب سبیہ کو میٹھا برس لگا تھا۔ اس کے بعد جب 6 6 صدیوں کی طرح چھاتی پر سے دندناتے گزر گئے تو اصغری خانم کو اپنی پالیسی نرم کرنی پڑی اور یہ طے پایا کہ اچھے خاندان کا لڑکا ہو تو کوئی بڑا اندھیر نہیں۔ یہ بات بھی نہیں تھی کہ سبیہ کوئی بدصورت ہو کہ کافی کھتری اور جاہل مرامیاں کا لٹ ہو۔ سانولی سلونی، بوٹا سا قد، نازک نازک ہاتھ پیر، کمر سے نیچے جھولتی ہوئی چوٹی، سوئی سوئی آنکھیں جن میں قدرتی کاجل بھرا ہوا تھا، جی بھر کے دیکھ لو تو نشہ آ جائے، ہنس دیتی تو موتی سے رل جاتے، آواز ایسی میٹھی کہ نوحے پڑتی تو سننے والوں کی ہچکی بن جاتی۔ اس پر سونے پر سہاگا علی گڑھ سے پرائیویٹ میٹرک پاس کر چکی تھی، مگر نصیب کی بات تھی، ہونی کو کون ٹال سکتا تھا، ورنہ کہاں سبیہ اور کہاں روشن۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں عورت مرد کا جوڑا آسمان پر طے ہو جاتا ہے، اگر سبیہ اور روشن کا جوڑا بھی آسمان پر طے ہوا تھا تو ضرور کچھ گھپلا ہو گیا، فرشتوں سے کچھ بھول چوک ہو گئی۔ یہ دھاندلی آسمانی طاقت نے جان بوجھ کر اصغری خانم کو ستانے کے لیے تو ہرگز نہ کی ہوگی، مگر الزام سارا اصغری خانم کے ماتھے تھوپ دیا گیا۔ لڑکا لڑکی صفا چھوٹ گئے اور وہ دھر لی گئیں۔ سمد میاں کو کسی نے کچھ نہ کہا کہ وہ بہن کی بانہ پکڑ کر اسے عذاب دوزخ جھیلنے کو جھونکائے، سارا گھر منہ پیٹ کے رہ گیا، کسی کی ایک نہ چلی۔ ہائے، اصغری خانم کہیں منہ دکھانے کی نہ رہی، کیا آن بان شان تھی بیچاریوں کی۔ मजाल थी जो महल्ले में उनके बगैर कोई काज हो जाए। किसी की बिटिया का कंछेदन होता तो उन्हीं को दबोच कर बैठने के लिए बुलवाया जाता, किसी के बाल बच्चा होता तो वही जच्चा का पेट थाम कर सहारा देती। फिर तौफीक जहां तो उनकी सगी ममेरी थी और रोशन को शीशे में उतारना कोई खेल न था, इसलिए मामला उन्हीं को अपने हाथों में लेना पड़ा। समद मियां 6 साल इंग्लिस्तान रहकर लौटे तो बेटे की सलामती की खुशी में तौफीक जहां ने मिलाद शरीफ करवाया था। बरेली वाले मियां खास तौर पर मिलाद पढ़ने तशरीफ लाए थे। सब औरतें अंदर वाले गोल कमरे में बैठी सवाब लूट रही थीं, लड़कियां बालियां चिक से लगी खुसफुस कर रही थीं कि इतने में समद मियां रोशन के साथ दाखिल हुए। वो शायद मिलाद शरीफ के बारे में भूल ही चुके थे, कोई और मौका होता तो शायद लौट जाते, मगर मियां साहिब ने घूर कर देखा तो पकड़े गए, मजबूरन दोनों एक तरफ बैठ गए। हाय ये कौन है? लड़कियों ने रोशन को देखकर कलेजे थाम लिए। समद मियां के सारे दोस्तों को देखा था, कमबख्त सभी तो चमररुख मरगिल्ले और घोंचू थे, मगर रोशन अपने नाम की तरह रोशन थे कि आंखें चकाचौंध हो गईं, कलेजे मुंह को आ गए जैसे दीवार फाड़कर आफ्ताब सवा नेजे पर आ गया। क्या क्या तेज जगमगाती आंखें जो हंसते तो यूं खो जाती कि जी गुम हो जाता, दांत गोया मोती चुन दिए हों, चौड़े चकले शाने, लंबी लंबी बुत तराशों जैसी सिडोल उंगलियां और रंगत, हाय जैसे उन्होंने भी बौखलाकर जल्दी से उंगलियां चूम ली। ऐसे भोंडेपन से कि लड़कियों के दिल उछलने लगे। बड़े मियां का जी खुश हो गया, वो उन्हें बड़े फख्र से भीगी भीगी आंखों से देखने लगे। सैयद का बेटा इंग्लिस्तान क्या अमरीका भी चला जाए, रहेगा खरा सैयद। मगर लड़कियों को खूब मालूम था कि इन लोगों को खाक कुछ याद नहीं, यूं ही मुल्लाओं की तरह बुदबुद होंठ हिला रहे हैं। उनकी इस शरारत पर इतनी बुरी तरह हंसी का हमला हुआ कि असगरी खानम ने दूर से पंखे की डंडी दिखाकर धमकाया, तब कहीं जाकर हंसी ने दम तोड़ा। मिलाद शरीफ के खात्मे पर जब सलाम पढ़ा गया तो सब खड़े हो गए। बड़े मियां ने मोहब्बत से लड़कों की तरफ देखकर सलाम पढ़ने में शरीक होने का इशारा किया। पढ़ो मी, पढ़ो मियां, खामोश क्यों हो?
जी जी,
खुदा के हुजूर में जो दिल से निकले वही उसे मंजूर होता है। उन्होंने रोशन को ऐसे घूरा कि वो सहम कर साथ देने लगे। समद मियां ने भी एक तान कुछ ओल्ड मैन रदर से सुरों में लगाई, मगर रोशन ने संभाल लिया। क्या भारी भरकम पुरसोज आवाज थी कि बड़े मियां पर तो रिक्कत तारी हो गई। विलायत पलट लड़कों से बदजन तमाम बुजुर्ग अपने गरीबानों में मुंह डालकर रह गए। अरे साहब, सच्चा मुसलमान चाहे काफिरों में रहे चाहे मस्जिद में, उसके ईमान पर दाग नहीं पड़ता। माशाल्लाह, रोशन मियां के गले में अकीदे का सोज भरा हुआ है। बड़े मियां ने आस्तीन के कोने से आंखें साफ करके फरमाया और रोशन के चेहरे पर नूर की चमक देखकर खिल उठे। सबिया की कटोरा जैसी आंखें छल छल बरस उठी, टिकटिकी बांधे वो उन्हें तकती रह गई। जब लड़कियों ने कायदे के मुताबिक उसे छेड़ा तो वो झूठों को भी न बिगड़ी। जिंदगी में पहली बार ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पुराना जान पहचान का मिल गया हो। समद मियां जब घर में आए तो हर एक का चेहरा रोशन के परतों से जगमगा रहा था, सिवाय सबिया के, जिसने चारों तरफ से घेर कर सवालों की भरमार कर दी। कौन है, क्या करते हैं, किसका लड़का है? सुगरा खानम ने लगामें अपने हाथ में ले ली। अपने बाप का, समद ने लापरवाही से टाल दिया और चाय बाहर बिछवाने के लिए कहा।
ऐ लड़के, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता, ये बताए इसके बाप कौन है?
है नहीं, थे, फॉरेस्ट ऑफिसर थे, 3 साल हुए डेथ हो गई उनकी।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
क्या करता है लड़का?
नानी बी ने पूछा।
कौन सा लड़का?
समद ने जाते जाते पलट कर पूछा।
ए, यही तेरा दोस्त रोशन,
डॉक्टर है, MD की डिग्री लेने साथ ही गया था, फिर वहीं इंग्लैंड में नौकरी कर ली।
कुछ खाने को भिजवा दीजिए, मगर मेरे कमरे में भिजवाइएगा, बाहर दर्जन भर बुड्ढे बैठे हैं, सब हड़प कर जाएंगे। ये बुढ़ापे में लोग इतने नदीदे क्यों हो जाते हैं? असगरी खानम फौरन खम ठोक कर मैदान में फान पड़ी, तीर तलवार संभाले और हल्ला बोल दिया।
ए समझ मियां, जैसे तुम वैसे तुम्हारा दोस्त, उससे क्या पर्दा, इधर ही गोल कमरे में बुला लो।
वो आंखों में रस घोल कर बोली, इन दिनों सैयदों में भी काना पर्दा शुरू हो गया है। खानदान के बड़े बूढ़ों की आंख बचाकर लड़कियां खुले नुमाइश में जाएं, मुशायरों में शरीक हों, सहेलियों के भाइयों से और भाइयों के दोस्तों से बड़ी बूढ़ियों की रजामंदी लेकर मिलें, मगर सड़क पर जाते वक्त टांगे पर पर्दा बांधा जाता है बुजुर्गों को दिखाने के लिए। समद रोशन को गोल कमरे में ले आए, सबिया के सिवा सब वहीं चाय पीने लगे। सबिया को असगरी खानम कमरे में घेरे चौमुखे हमले कर रही थी, उसका बस चलता तो जहेज का कोई भारी जरतार जोड़ा पहना देती, मगर सबिया हसबे आदत बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए रो रही थी। घर में जब कोई मोटा मुर्गा आता तो उसे यूं ही सजाया जाता, बेचारी के हाथ पैर ठंडे हो जाते, मुंह लटक जाता और नाक पर पसीना फूट निकलता और शक्ल चोटी बिल्ली की सी हो जाती। जब से कई पैगाम आकर फिर गए तब से उसे और भी वहशत होने लगी थी।
रोशन जैसा हैंडसम और कमाऊ बर भला कैसे फंसेगा। जरा कोई लड़का किसी काबिल हुआ तो खानदान वाले ही रिश्ते का हक वसूल करने दौड़ पड़ते हैं। फिर मिलने मिलाने वालों की बारी आती है। हो सकता है उसकी शादी भी हो चुकी हो, दो बच्चे हों। मगर असगरी खानम कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, न उन्होंने धूप में चौंडा सफेद किया था।
लौंडा खैर से कंवारा है, ब्याहे मर्द का ढंगी और होता है।
दूसरे उन्होंने पहले ही समझ से पूछ लिया था।
बीवी बच्चे संगी हैं?
किसके? रोशन के। अरे उस गधे के बीवी बच्चे कहाँ, अभी तो खुद ही बच्चा है, मुझसे 2 साल छोटा है। बस असगरी खानम ने चट हिसाब लगा लिया कि सबीहा से 4 साल बड़ा हुआ, खूब जोड़ी रहेगी। इससे कम फर्क हो तो 4 बच्चों के बाद बीवी मियाँ की अम्मा लगने लगती है। वैसे मरने वाले तो असगरी खानम से 20 बरस बड़े थे। हाय क्या इश्क था अपनी दुल्हन जान से। मगर असगरी खानम जब सजा बनाकर सबीहा को गोल कमरे में लाई तो रोशन जा चुके थे। असगरी खानम का बस चलता तो चीखती चिल्लाती उनके पीछे लपकती, मगर समद मियाँ की उन्होंने खूब टांग ली।
जवान बहना की पाल कब तक डालोगे? क्या सफेद चौंडे में अफसर चुनी जाएगी? तुम ही कुछ ना करोगे तो कौन करेगा?
कौन मैं? समद खामखा चढ़ गए। मुझसे खुद अपनी शादी नहीं हो रही है, दूसरों की क्या करूंगा?
मजाक में हर बात को टाल देते हो, आज उसका बाप जिंदा होता तो।
असगरी खानम टुसर टुसर रोने लगती।
आखिर क्या होगा इन 4 चट्टानों का? तौफीक निगोड़ी को हौले दिल के दौरे ना पड़े तो और क्या हो।
कौन सी चट्टाने? समद मियाँ इंजीनियर थे, उन्हें चट्टानों पहाड़ियों से बड़ी दिलचस्पी थी।
ए मियाँ बनो मत, अल्लाह रखे अब तुम इस काबिल हो, अपने दोस्तों में से ढूंढो कोई।
भाई मैं इन झगड़ों में नहीं पढ़ना चाहता, वो टाल कर चल दिए। मक्खन में जैसे जाफरान के साथ चुटकी भर शहाबी रंग मिला दिया हो। पंचों ने देखा कि सबीहा के सलोने चेहरे पर यकायक हल्दी बिखर गई, घनी घनी पलकें लर्जी और झपक गईं, होंठ मीठे मीठे हो गए, लड़कियों को मक्कारी से मुस्कुराता देखकर बिगड़ बैठी। समद मियाँ और रोशन नंगे सर बैठे थे, उन्हें देखकर एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग गुर्राए, ए साहबजादे इतने भी जेंटलमैन न बनिए, मिलाद शरीफ के मौके पर नंगे सर बैठने वालों के सर पर शैतान धुएं मारता है। रोशन ने सहम कर समद की तरफ देखा, उन्होंने झट जेब से रुमाल निकालकर चपाती की तरह सर पर मंड लिया। रोशन ने भी उनकी नकल की, हवा से रुमाल उड़ता तो बंदर की तरह सर पर हथेली जमा कर बैठ गए। ऐसी भोली भाली शक्ल लगी कि लड़कियों की पार्टी में गुदगुदी रिंग गई। सबिया के मुकड़े की हल्दी में एकदम गुलाल खिल गया और नारंगी रंग फूट निकला। दाढ़ी वाले हजरत जो मूछ दाढ़ी सफा चट विलायत पलट लड़कों की घात में बैठे थे और अपनी कहर आलूद निगाहें दोनों पर गाड़ रखी थी, मगर ये दोनों भी चौकन्ने बैठे थे और बिल्कुल बंदरों की तरह उनकी नकल में आंखें बंद करके झूम झूम कर सुन रहे थे और सर धुन रहे थे। बड़े मियाँ ने दुरूद पढ़कर उंगलियों के पोरों को चूमा और आंखों से लगा लिया। झट समद मियाँ ने भी उनकी नकल की और रोशन को कोहनी मारी, चल लिए। मगर आंधी तूफान टले, असगरी खानम को कौन टाले, आते जाते टांग लेती। फिर उन्हें एक अनोखी तरकीब सूझी, वो फौरन किसी जानलेवा और अनजाने मर्ज में मुब्तला हो गई, और ऐन उस वक्त जब समद मियाँ रोशन मियाँ से मिलने आए। उन पर सख्त भयानक किस्म का दौरा पड़ गया, इतने जोर से आहें भरी कि बेचारे बदहवास हो गए। बड़ी देर तक देखते भालते रहे, असगरी खानम आखिरी वक्त में भला सबीहा का हाथ क्यों कर छोड़ देती। वो उनके सराहने सहमी हुई बैठी रही कि कहीं चोर पकड़ न लिया जाए। उन्हें खामोश देखकर वो समझ गई कि असगरी बुआ की चाल पकड़ी गई। क्या बीमारी है? उन्होंने डरते डरते पूछा।
जो पूछिए कि कौन सी बीमारी नहीं है, गुर्दों की हालत खराब है, मैदा कतई काम नहीं करता, दिल बस जरा सा धड़क रहा है, आंखों के नीचे जख्म है, फेफड़ों के नीचे पानी उतर आया है।
उन्होंने समद को एक तरफ ले जाकर कहा। सबीहा ने सुना तो हंसी ना रोक सकी, असली मर्ज की तरफ तो उन्होंने आंख उठाकर भी ना देखा। अमां हटाओ भी, इतनी बीमारियां होती तो जिंदा कैसे रह सकती थी, और जिंदा भी कैसी, सारे खानदान पर चाबुक फिटकारती हैं। समद बोले, यही तो मैं सोच रहा हूं, ये जिंदा कैसे हैं? कुछ ऐसी लेपा पोती होती रहती है कि खंडर खड़ा है, डॉक्टरी से बढ़कर कोई ताकत काम कर रही है। असगरी बुआ ठनकी और बिदक उठी।
उई नौश दूर पार, एलो मेरे दुश्मन काहे को लबे गोर होते। ए मियां तुम डॉक्टर हो कि मेरे सिलवत्री? ए चूल्हे में जाए तुम्हारी दवाएं, मुई फिरंगियों की दवाओं में दुनिया भर की किल्लतें होती हैं। थू,
वो बुड़बुड़ाई।
बस अल्लाह पाक इज्जत आबरू से उठा ले। ए लड़के ठीक से बैठ, निगोड़ियों कुछ शरबत लाओ के गधियों की तरह मुखड़ी देख रही हो। ए बच्चे क्या बहने हैं तेरी?
अचानक असगरी खानम ने पैंतरा बदला। जी दो बड़ी बहने, एक बेवा है। रोशन ने संभल कर वार रोका।
है और दूसरी कहाँ ब्याही है?
कानपुर में, सिविल इंजीनियर हैं उनके।
कानपुर ही में तो अपने तकी मियाँ के खलिया सास रहे हैं, क्या नाम है अल्लाह रख के बहनोई का?
SN कचलू, समद मियाँ बोले।
क्या कुछ बनवाने का इरादा है?
हाँ, अपनी कब्र बनवाऊंगी। अच्छा, तो तुम लोग कश्मीरी हो?
बेचारी कुछ बुझ गई।
ये सैफुद्दीन कचलू के खानदान से कुछ है मेल?
जी, वो मेरे चचा के दोस्त थे। रोशन के जाने के बाद तड़प कर मरीजा उठ बैठी।
भाई सोच लो, कश्मीरी हैं।
हाँ, और इससे पहले जो पैगाम आया था वो लोग कंबो थे, बस यही देखती रहो। अरे सब इंसान बराबर हैं, पाक परवरदिगार ने सबको अपने हाथ से बनाया है, मुसलमानों में जात पात छूत छात नहीं होती। तौफीक जहां बिगड़ने लगी।
भाई मुझे ये सभी है कि नखरे फूटी आंख नहीं भाते, इधर वो आया और इधर बन्नो नथु था कर भागी। जी चाह लगाऊं चुड़ैल के दो चांटे।
मगर सभीया क्या करती, रोशन के आते ही वो कमरे में भाग जाती। यूं सबके सामने घूर कर देखती तो न जाने वो क्या सोचते। दरवाजे की आड़ से मजे से जी भर के देख सकती थी। अब तो इलाज के लिए वो बिला नागा आने लगे। असगरी खानम कुछ ऐसी तरकीब चलती कि सभीया को पास रोक लेती, और बेचारे रोशन तो ऐसे झेपू थे कि सभीया भी शेर हो गई। उन्हें एक नजर भर के अपनी बुरी आंखों से देखती तो उनके हाथ में इंजेक्शन की सुई कांपने लगती। वो हंस पड़ती तो घबराकर बच्चों की तरह नाखून कुतरने लगते, तब वो और भी दीदा दलेर हो जाती।
डॉक्टर साहब, हमारी बिल्ली का जी अच्छा नहीं।
क्या हो गया?
पता नहीं, बेचारी खोई खोई सी रहती है।
ओहो, मालूम होता है बेचारी का दिल टूट गया है।
अरे वाह, क्यों?
आप रूठ गई होंगी, वो दबी जबान से कहते।
जी हाँ, मैं क्यों रूठती?
सभी हाँ काली पलकें झपकाती।
तो फिर डरती होगी आपसे? वाह, क्या मैं इतनी डरावनी हूं?
उसके बाद दोनों अंग्रेजी में नोक झोंक किए जाते तो असगरी खानम को घबराहट होने लगती। भला गिटपिट करके भी कहीं प्यार की बातें हुआ करती हैं? वही काफिरों की जबान में लेफ्ट राइट को एक मार्च के सिवा और क्या मालूम होता है। वो एकदम बीच में कूद पड़ती।
ए रोशन मेरे चांद, जरा मेरी बालूशाहियों पर न्यास तो दे दे, तेरे खालू मियां की पर्सी है।
वो फौरन होशियारी से रिश्ता लगाती। कौन है? रोशन बुखलाए।
आप भी हद करती हैं असगरी खाला, इनसे फातिहा पढ़वाकर अपनी आकबत खराब कराने का इरादा है? भला इन्हें क्या खबर कि फातिहा किस चिड़िया का नाम है, एक आयत भी ज्यादा होगी।
सभीया उड़ने लगी। रोशन, अच्छा मुल्लानी जी आप बीच में ना बोलें, रोशन चिढ़ गए।
अरे साहब छोड़िए, हमें मालूम है आप और समद भैया में क्या फर्क है, वो भी तो साहेब बहादुर बन गए हैं।
खाला जी, आप रोशन से फातिहा पढ़वा रही हैं, समद ने कहकहा लगाया।
ए गारत हो, कलमू हो, लानत हो, मुझे आजकल के लौंडे हैं कि निगोड़े सब के सब बेदीन।
असगरी खानम बालूशाहियों का थाल उठाकर दालान में ले गई, मगर बेचारी की फिक्र दूर न हुई।
ए तौफीक जहां?
तौफीक जहां ने पंखे से मक्खी को धमकाकर जवाब दिया।
ए मैं कहूं, ये आजकल के लड़कों के निकाह कैसे पढ़े जावेंगे?
क्यों?
ए इन्हें आमंतु भी तो नहीं आती? आमंतु बिल्ला एक आयत होती है जो निकाह के वक्त दूल्हा को पढ़नी होती है, जिसमें वो इकरार करता है कि मैं खुदा और उसके फरिश्तों और उसकी भेजी हुई किताबों पर ईमान रखता हूँ। इस आयत को पढ़े बगैर निकाह नहीं हो सकता।
काजी जी बोलते जाते हैं और दूल्हा दोहराता जाता है। बस बहन, अब तो ऐसे ही निकाह हो रहे हैं, तौफीक जहां बोली।
मगर अब इस न्यास का क्या हो?
वो फिक्रमंद हो गई।
कैसी कैसी न्यास? अरे भाई मैंने तो झूठ मूठी कह दिया था कि उनकी बरसी है, ये मन्नत की न्यास है, लड़का खुद न्यास दे जब ही पूरी होगी।
अरे चलो इधर, ऐसी कोई मन्नत नहीं होती, तौफीक जहां ने टालना चाहा।
नहीं जी, तुम तो किसी बात को मानती ही नहीं हो। खैर फिर सही।
और वो खुद ही दुपट्टा सर पर मंड कर बुद बुद न्याज देने लगी। दूसरे दिन रोशन आए तो झट पूछा,
क्यों रे, तूने कुरान खत्म किया था?
जी नहीं, तो एक बार अंग्रेजी में पढ़ा था थोड़ा सा। तो रोशन हकलाए।
हे हे, ये मुई लक्कड़ तोड़ जबान में कैसा कुरान, लड़के दीवाना तो नहीं हुआ?
तो समद भैया ने कौन सा पढ़ लिया है? सारी उम्र अंग्रेजी स्कूलों में रहे, कॉलेज में फुर्सत न मिली, उसके बाद इंग्लैंड चले गए।
मगर खुद हर रमजान के महीने में 5 कुरान खत्म करती है, रोजे नमाज की पाबंद थी। हालांकि समत कहते थे वो नाजुक बदन बनने के लिए फाके करती थी। तौबा तौबा, सूत न कपास कूली से लट्ठम लट्ठा। रोशन की आंखों से दिल के राज का पता बच्चे बच्चे को चल चुका था, मगर जबान न जाने क्यों गंग थी। कभी बैठे बैठे एकदम आंखों में गम का अथाह समंदर ठाठे मारने लगता और सर झुकाकर उठकर चले जाते। सभीया की तरफ ऐसी तरसी हुई निगाहों से देखते जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में खड़ी हो, दरमियान में फौलादी सलाखें हो और काले देव का पहरा हो। सभीया के मुखड़े पर गुरूर और इत्मीनान का नूर फूटने लगा था, जैसे मंजिल पर पहुंचकर आराम से छांव में बैठ गई हो। सारी अनजानी कसक और तन्हाई मिटकर घरौंद जगरमगर करने लगा हो। मगर दिक्कत यह थी कि लड़के का यहां कोई है नहीं, फिर पैगाम कैसे मंगवाया जाए? आज तो शादियां ऐसे ही होती हैं कि दो जनों का एक दूसरे पर जी आ गया, दोस्तों ने पैगाम दिया, यारों ने शादी कर दी। असगरी खानम को ऐसी टुकड़ा तोड़ शादियों से भी चिढ़ थी, मगर उन्होंने रो पीट कर समझौता कर लिया था। पहले पहल जब नुसरत और हलीका ने ऐसी चटपट शादी की थी तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया था, मगर फिर उन्हें अपनी पॉलिसी नर्म करना पड़ी। उधर रोशन भोंदू थे, इधर सबिया भी जरा चंट होती तो कभी का उन्हें डकार चुकी होती। काश उसे कोई छोटी मोटी प्यारी सी बीमारी लग जाती तो रोशन उसका इलाज करते करते खुद मर्ज मोल ले बैठते। मगर असगरी खानम घेर घेर कर मुर्गी को दड़बे में फांसने की कोशिश करती, मगर अपने मुंह की खाकर रह जाती।
ए लड़की, तेरे सर में आधे सर का दर्द हो रहा था, इलाज क्यों नहीं करा लेती डॉक्टर से? ए वाह खाला जी, मेरे सर में काहे को होता दर्द?
वो बिगड़ने लगती गधी।
पहले तो होवे था, अब भली चंगी हो गई हो तो मुझे खबर नहीं,
वो सबिया की सेहत से जलकर कहती।
देख तो बेटा रोशन, कैसी झुलस कर रह गई है बच्ची।
अरे खाला जी, इनकी तो रंगत ही स्याह भेट है, कहिए तो खाल खींच कर दूसरी चढ़ा दूं प्लास्टिक सर्जरी से।
जी हाँ, बड़े आए खाल खींचने वाले, हम काले ही भले। ओए काली किधर है लौंडिया? हाँ गेहूं रंगत है,
असगरी बुआ परेशान होकर कहती।
जी हाँ, इधर कुछ दिनों से अमेरिका से गेहूं भी काला ही आ रहा है, रोशन छेड़ते।
हाँ बस एक आप ही जमाने भर में गोरे हैं,
फीके शलजम, सभी हचड़ जाती।
आप तो नमक की कान हैं, चलिए कुछ तो मजा आ जाएगा,
वो चुपके से कहते। असगरी खानम बदमजगी मिटाने को जल्दी से बात बदलती।
ए काली गोरी रंगत ने तो सब अल्लाह की देन है, परसों कह रही थी सर भारी है, वैसे तेरे बाल भी तो झड़ रहे हैं बेटा, कोई बाल बढ़ाने की दवा तो बताओ।
अरे खाला जी बहुत बाल हैं, हाँ कहिए तो दिमाग बढ़ाने की दो चार इंजेक्शन लगा दूं।
बड़े आए सलवत्री जी,
और रोशन का चेहरा हंसते हंसते सबिया के गुलाबी आंचल को मात करने लगा। असगरी खानम इस कचर पचर से उदास होकर बड़ी जोर जोर से कराने लगती। एक दिन उन्होंने समत को घेर कर बात कर ही डाली।
ए भैया कोई पैगाम ना है गाम?
कैसा पैगाम
है रोशन का? उसे कहो अपनी बहन बहनोई से पैगाम भिजवाए।
मगर खाला जी रोशन।
हाँ हाँ बेटे मुझे सब मालूम है, मगर अब जमाना बदल गया है, हजारों शादियां हो रही हैं, कब तक लड़की बिठाए रखेंगे? तौफीक जहां का दिल कोई दिन और किराम देगा, फिर दोनों में अल्लाह रखे चाव भी है।
मगर खाला जी।
बेटे तुम अल्लाह रखे सात समंदर पार रहे, तुम्हें क्या मालूम दुनिया कितनी बदल गई है, सैयदों की बेटियां किन किन को गईं, सरफराज मियाँ की लड़की ने तो जहर खा लिया, अब अल्लाह की मर्जी ही यही है तो जहालत की बातों में पढ़ने से क्या हासिल।
मगर मैं सोचूंगा, समद मियाँ चकराए फिर जाकर बाहर पड़ गए, इस इनकलाब की उन्हें उम्मीद न थी। दुनिया से दूर वो कितने जाहिल रह गए थे, जबकि उनके बुजुर्ग तक इतने रोशन ख्याल हो चुके थे। उनका दिल गुरूर से भर गया। शाम की गाड़ी से उन्हें साइंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना था, अब वहां से लौट कर ही सब कुछ होगा। इधर असगरी खानम ने वक्त जाया करना मुनासिब न समझा, अगर कोई और मौका होता तो आसमान सर पर उठा लेती। यहां बेटी ब्यानी थी, इसलिए तौफीक जहां को कह सुनकर पटा लिया कि सबिया बेकार वक्त बर्बाद करने के बजाय अगर कुछ काम सीखने लगे तो कैसा रहे। तय हुआ कि रोशन मियाँ की डिस्पेंसरी में नर्सिंग सीखने चली जाया करें। बिल्ली के भागों छीका टूटा और सबिया नर्सिंग सीखने जाने लगी, जिसका सबक सुबह से लेकर रात के सिनेमा के आखिरी शो तक चलता रहता, और सबिया चुस्त चालाक नर्स के बजाय दिन ब दिन उस जाने पहचाने मर्ज में खो गई जो जन्म जन्म से मर्द औरत को सौंपता आया है। रोशन के स्वेटर बुने जाने लगे और कमरे में उनकी कमीज उनके मोजे बिखर से गए, बस 14 तबक रोशन हो गए। जैसे ही शिकार गिरता है, शिकारी जो मकर गांठे झाड़ियों में दुबका होता है, एक ही जस्त लगाकर आदबोचता है और गले पर छुरी रख देता है। असगरी खानम ने भी सारी बीमारी दूर फेंकी और धम से अखाड़े में आन जमी। झपा झप जहेज सिलने लगा, दीपों पर से लिहाफ तोशक के अंबार उतार कर कलई होने लगी, ड्योड़ी पर सुनार बैठ गया कि सामने ना बनवाओ तो मुआ उपले थोप देगा। बी सैयदानी मछले की पोट संभाल कर तवी चंपा और गोखरू तोड़ने लगी। गोखरू के हर कंगूरे पर लब भर के दुआएं देती जाती। गोइयां सुहाग और मजे याद करके कापियों में उतारने लगी। गोरे दूल्हा और सांवली दुल्हन पर गीत जोड़े जाने लगे।
ए भाई बाप का नाम रोशन तो बेटे का?
असगरी खानम फिक्रमंद होकर पूछती।
जोशन,
कोई शोक सहेली छेड़ती तो सबिया जलकर उसकी बूटियां नोचने लगती।
ए भाई उन्हें अपनी कल्लो रानी ही पसंद है तो तुम लोग काहे को जली मरती हो?
असगरी खानम डांटती और सबिया आंखों में ख्वाबों के जुमघुटे लिए नर्सिंग सीखने भाग जाती। मगर किसे खबर थी ये गुल खिलाएगी, पल भर में चमकता सूरज उल्टा तवा बन जाएगा। वही रोशन जो कल तक चौदहवीं के चांद को शर्मा रहे थे, लोट पोट कर खड़े हुए तो काला देव, और उस काले देव ने पलक झपकाते में ऊंचे ऊंचे महलों को चकनाचूर कर दिया। असगरी खानम के सारे नए पुराने मर्ज एकदम उन पर टूट पड़े। जब समद मियां कॉन्फ्रेंस से जम जम कर लौटे तो घर में जैसे कोई मैयत हो गई हो। सन्नाटा भाएं भाएं कर रहा था। असगरी खानम का एक कोसना जमीन में तो एक आसमान पर। जमरुद का महल सातवीं आसमान पर लर्जा और एकदम फुस से बैठ गया। कलई की दीफों पर फिर लिहाफ तो शक लद गए। धनक की पिंडियां उलझ कर झूंझ बन गईं। सारी ड्योड़ी से धुतकार दिया गया और जिसने सुना मुंह पीट लिया। आखिर हुआ क्या, कुछ मालूम तो हो, तौफीक मियां ने पूछा।
अरे इस छीती से पूछो जो चढ़ चढ़ के दीदी लड़ाने जाती थी,
तौफीक जहां ने जानू पीट लिया।
हर्राफा,